राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 11 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बिना सर दौरा पर हुआ। राम
नारायण नारायण नारायण। अब बोलो महाराज, चलो बात बढ़िया
बात चली। उत्कंठा प्रबल होने पर कर्ण की अपेक्षा नहीं रहती।
हाँ
महाराज जी, कर्ण की शुद्धि के बिना क्या उत्कृष्ट अभिलाषा हो सकती है?
बिल्कुल हो सकती है। कर्ण में कौन सा कर्ण था, कौन सा पहले साधन था, रूप नहीं क्या साधन था पहले, ये जो आत्मभक्त हुए है उनमें कौन सी बात थी, उत्तरा की कौन सी बात थी, हाथ में उत्तरा में रूप से स्त्री थी
जी।
तो उत्तरा कौन सा साधन है, ये बात आप कहते हो, ये नहीं है मेरी मान्यता। उत्कंठा अधिक होने से कर्ण की अपेक्षा होती है, नहीं नहीं रहती है, ये बात नहीं है। कर्ण की अपेक्षा वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति में कर्ण की अपेक्षा किसी के लिए नहीं है, चाहे उत्कट हो और चाहे मोहरे हो मंद हो, कर्ण साध्य है नहीं तत्व।
ये तो महाराज जी, जब कर्णों का खूब उपयोग करेंगे तब उनसे निराश होंगे।
खैर वो उपयोग करो चाहे उपयोग मत करो, कर्ण साध्य तत्व नहीं है, ये है हमारे जीवी तत्व कर्ण साध्य नहीं है।
तत्व कर्ण साध्य तो अंतिम स्थिति में नहीं है,
अंतिम अगर किसी कर्ण साध्य है ही नहीं, अंतिम क्या है? परमात्म तत्व देखो, चेतन जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी, जड़ के त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये है मूल मेरी बात मूल में ये चीज है। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी, नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी, अविनाशी चाहे कितना ही उपयोगी हो परंतु तत्व अविनाशी की प्राप्ति में कारण कैसे होगा अविनाशी, ये है मेरे तो खास बात। आप विचार करो सर, मैं तो ऐसा चाहूं ऐसा विचार करे और टकराव सामने आवे तो ठीक लगे, अच्छी लगती, प्रिय लगती है बात। अब क्या तो मैं सची नहीं हुई, मैं ये नहीं कहता हूँ। कर्ण सापेक्ष तत्व कर्ण सापेक्ष नहीं है, इसमें आप खूब दलील दो, जो भाई जैसा चाहे दलील दो उस बात में।
प्रश्न तो यही है महाराज जी, कर्ण सापेक्ष तत्व तो नहीं है
हाँ।
परंतु हमारे पास उपलब्धि के
तो कर्ण का निषेध कर नहीं करता हूँ मैं।
अब इधर आप निषेध भी नहीं करते हैं, उधर सापेक्ष भी नहीं बताते हैं, दोनों का क्या बात है?
दोनों की ये बात है, कल बताई थी साहब ही, बाधा क्या है कि जड़ की जो आसक्ति संयोग जन्य सुख की आसक्ति है, यह है बाधा। तो
यही बाधा है, ये अंतकरण की अशुद्धि है,
अंतकरण की अशुद्धि यही रही। अंतकरण अशुद्धि में मल विक्षेप आवरण तीन दोष मान्या है
जी।
तो ये दोष तो है मल दोष है,
तो मल दोष का तो महाराज अंतःकरण में हुए,
तो अंतःकरण मल दोष है तो मल दोष दूर हो जाए, परंतु मल दोष है वो अंतःकरण मल दोष है तो अंतःकरण को परमात्मा की तरफ सन्मुख नहीं होने देता, ये बात है। परंतु स्वयं अंतःकरण की परवश नहीं है, खुश हुए बात बहुत खुलासा होगी।
तो फिर महाराज फिर इस दोष के रहते हुए भी तत्व प्राप्ति हो जानी चाहिए,
तत्व प्राप्ति दोष रहते नहीं हुए, तत्व की प्राप्ति दोष मिट जाएगा, दोष के रहते हुए भी साक्षात होते ही मिट जाएगा। आप बताओ कि सूर्योदय पहले होता है अंधकार पहले नष्ट होता है,
एक साथ होता है
क्या होती है, तो कारण तो नहीं रहा ना। इसमें दोनों में अगर विचार कर देखा जाए तो शक्ति जो परमात्मा तत्व में जीवात्मा में खुद में है, वो शक्ति किसी कारण है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं कभी, कभी नहीं हो सकता, बचा हुआ भी इसको अवसर हुआ।
जो जीव में शक्ति है
और जो परमात्मा में है वो तागतिकरण में किसी में नहीं है, ही नहीं बुद्धि में नहीं होगी किसी में होगा।
ये निर्विवाद बात है, कर्ण में शक्ति तो वहीं से आएगी ही आएगी।
हाँ सही हो सही, तो कर्ण क्या नहीं हल करेगा, जोर से तो इस बात से नहीं कहता हूँ कि लोग ऊंधी बात पकड़ रहे हैं, साधन में जरूरत नहीं है पकड़ रहे हैं, ये भय लगता है। इस बात से मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, नहीं तो कर्ण साफ है ही नहीं। स्वयं जब चाहेगा परमात्मा को, और परमात्मा स्वयं ये था माम प्रपद्यन्ते तां तथैव जाम्यहम्, तब क्या कौन बाधा दे सकता है, कैसे दे सकता है, किसकी ताकत है।
स्वयं चाहेगा और फिर अंतकरण में आसक्ति पड़ी है वो बाधा है, ये यहाँ
मिट जाएगी, आसक्ति मिट जाएगी। वो आसक्ति और परमात्मा चाहना, इसमें चाहना बढ़ जाएगी मिट जाएगी।
वही तो बात है महाराज, चाहना उस आसक्ति के रहते कैसे बढ़ेगी,
कैसे अंतकरण के अधीन नहीं है वो चाहना। अंतकरण शुद्ध हो तो चाहना पड़े, अंतकरण शुद्ध नहीं हो चाहना नहीं पड़े, ये नियम नहीं है। अर्थ भक्त है तो पुकारा है भगवान ने, एकदम बिल्कुल साधारण नीचा डाकू चोर हत्यारा ऐसा हत्या करने वाले भी परमात्मा प्राप्त हो गए, कर्ण शुद्धि हो तो कैसे होगा। माधु सिंह जी डाकू थे नाम ही, कैसे बदल गए, और वो ऐसे ऐसे भक्त हुए की जो अंतम शुद्ध नहीं कह सकते। स्वयं परमात्मा का अंश है ये, अब परमात्मा की प्राप्ति में ये स्वतंत्र नहीं है तो किस बात में स्वतंत्र है, और किसी बात में स्वतंत्र है ही नहीं, और परमात्मा की प्राप्ति में प्रथम है ही नहीं। अभी सब बता दो,
ये दलील बड़ी पुष्ट है,
हा?
ये दलील बड़ी मजबूत है,
तो मजबूत भी नहीं मैं पकड़ी है, मारी दृष्टि सुन लो। देखो भाई हर एक आदमी अपनी बात तो अपनी दृष्टि में तो ठीक ही समझता है कि नहीं, तो मैं जो कहता हूँ तो अपनी दृष्टि में ठीक समझ नहीं कहता हूँ। आप पूछो तर्क करो तो निकलेगी, मैं बहुत बार कहता हूँ आप प्रश्न करो, बहुत खुलेगी बात। अंतकरण की अपेक्षा संसार में है, संसार में अंतकरण जितना शुद्ध हो चुका संसार ही काम ठीक करेगा, तो सहायता अंतकरण से ले सकते हैं, संसार में संसार सबसे सहायता ले सकते हैं, कर्ज गधे ने माफ करे।
सहायता के लिए तो आपको शरीर की भी सहायता देते
हैं, लेनी चाहिए,
वस्तु की भी सहायता लेते हैं, वस्तु की भी सहायता लेते हैं,
बिल्कुल लेते हैं,
स्थान देश की भी सहायता लेते
हैं, हाँ देश लेनी चाहिए, इसलिए नहीं करता हूँ मैं। परंतु तत्व की प्राप्ति जो कही जाती है, जिसे तत्व साक्षात्कार होता है, भगवान का प्रेम होता है, भगवान के दर्शन होते हैं, इसमें कर्ण की अपेक्षा नहीं है, कर्ता की अपेक्षा स्वयं की, जिसमें कर्तृत्व नहीं है स्वयं में, कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार है, और कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वयं में नहीं है, और कर्ण हटा नहीं सकेगा कर्तृत्व भोक्तृत्व, किसी कर्म की ताकत नहीं तो कर्तव्य से भोक्तृत्व से हटा दे, किसी कर्म की ताकत नहीं है।
ये कर्तृत्व भोक्तृत्व किसी क्रिया से तो पैदा हुआ नहीं,
क्रिया पैदा तभी तो क्रिया से हटेगा नहीं,
तभी क्रिया से नहीं हटेगा,
हाँ
यही बात।
हाँ खूब आप अभी जो ऐसी दलील मैं चाहता हूँ, सुनने वाले बोले को नहीं मैं क्या करूं, अगर ये बोले ठीक समझ करके तो विषय बहुत खुलेगा, मेरे को पता नहीं किसकी क्या बाधा लगी हुई है, इसे पता नहीं है ना, जो बोलेंगे तो पता लग जाएगा।
महाराज जी आपके जो श्रीमुख से वचन निकलते हैं उनका जो आशय है वो प्राय हम लोग पकड़ नहीं पाते। कर्ण निरपेक्ष तो मतलब कर्ण की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, इसका कोई उपयोग ही नहीं, अब कोई दूसरा कोई मतलब
ऐसा नहीं है। तो आपने खुद ने कह दिया कि सही का उपयोग मानते हो आप मेरे विषय में, आप कहते हो पशुओं का उपयोग भी मानते हो, मैं तो रुपयों का उपयोग मानता हूँ, परिवार का, वस्तुओं का, जड़ चीजें जिनका उपयोग भी मानता हूँ सहायक है, पर परमात्म तत्व की प्राप्ति में कोई कारण नहीं है। इस दलील को जितना आप प्रश्न करोगे विषय बहुत खुलेगा, साफ खुलेगा। जो शंका हो खूब करो, कसके बढ़िया बढ़िया कसके करो, अच्छे से बस खुलेगी।
और उसका तो विलासा के लिए अंतःकरण शुद्धि की आवश्यकता नहीं
है। अंतःकरण शुद्धि से भी होती है, परंतु अंतःकरण शुद्धि होने पर और अंतःकरण शुद्धि को मुख्य मानेगा तो उत्कंठा नहीं होगी, जोरदार पैदा होगी।
पैदा कैसे हो रहा
है? बड़ा लिखा हूँ मैं, शान का हूँ मैं, समझदार हूँ, ये बात है, बहुत महान बात है। कोई बात नहीं है, अभिमान तो खास बात है, अभिमान भगवान की बात करे, अभिमान भगवान को बहुत बुरा लगता है, दिन तो अच्छी लगती है, तो एक दिन ठहरती नहीं। जितने साधन है जिन्हें में महत्व देगा जाए तो महत्व अपने जगह तक है, अगर से अगर नहीं पा सकते महत्व केवल संसार संसार में है। जितने साधन है यज्ञ न हम वेदी न तपसा न दारे न सीजिया न वेदे या धैने दाने न सक्रिया भिन्न सबो दुखी, चार बताइए, तीन है यज्ञ दान तप, तीन आई विशेषता से, और एक क्रिया भी हो गई, एक कर्म भी ले, क्रिया भी ले ली है, बस चार ही है। और पहली गीता में से बढ़कर कौन सा है? न वेद यज्ञ जेने न दान न सक्रिया भीड़ न सबो भी रुक गई, चार की सौ पांच सौ है नहीं, क्रिया यही आई और यज्ञ दान तब तीन है, वेदेश यज्ञेश तपस्व से दानेश पुण्य फलम प्रदेश अत्यंत तत्सर्व विदित जान करके इसको सबको अतिक्रमण कर जाता है, वो अतिक्रम कर जाता है, सास कैसे रहा है इनका।
आपने ये भी फरमाया जड़ता के द्वारा चेतन की कैसे प्राप्ति होगी,
कैसे होगी
जड़ता के द्वारा, जड़ता से संबंध विच्छेद
करेगा, उसमें सहायता होगी, संबंध विच्छेद पूरा नहीं करेगा, क्यों उस जड़ता को दिया है, जड़ता संबंध विच्छेद कैसे होगा, वही ना कैसे सहायता ही जड़ के लिए है, तो उसका संबंध कैसे होता, उसको तो आवश्यक समझना पड़ेगा।
ये तो बोल तो व्याघात हो गया, जड़ता से जड़ता का संबंध विच्छेद कैसे करेगा,
छात पर चढ़ने के लिए सीढ़ी काम की है, परंतु सीढ़ी छात पर जा नहीं सकती,
तो पहुंचाने के लिए तो काम आती
है, पहुंचाने के काम आती है, तो कहाँ काम,
ऐसे अंतःकरण तत्व की प्राप्ति के तो पहुंचाने में काम आ जाए,
पैसे में काम, हम कहते हैं सभी सही को उपयोग मानते, पैसों को भी उपयोग मानते, कौन नहीं उपयोग मानता, वहां कैसे पहुंचा देगा,
रहेगी तो नीचे ही
नीचे,
छात से तो सीढ़ी नीचे रहेगी,
आप जितनी पूछोगे दलील दोगे उतना विषय बहुत स्पष्ट होगा, साफ होगा। मैं इतना खंडन करता नहीं हूँ जैसे आज कहा आप साहब, ऐसे मैं नहीं कहता हूँ बेकार में, और कारण ये है कि लोग पकड़ेंगे नहीं मेरी बात को, उन देखो हो जाएंगे और गलती हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा,
एक बात महाराज जी आपके सामने तो नहीं आती है पर हम लोगों के सामने आ जाती है बात करते करते कि स्वामी जी महाराज भी तो पहले तो ये सब करते ही थे
अब नहीं करता
परिपक्व अवस्था में अब ऐसा बोलने लगे
नहीं मैं पहले अब नहीं करता हूँ क्या
हम इतने में तो अपना पूरा होता ही पहले कर्ण निरपेक्ष नहीं बोलते थे अब बोलते हैं
तो वो तो मेरे को बोध होता है बोलता हूँ
तो परिपक्व अवस्था आई ना तब जाके
परिपक्व अवस्था स्वरूप की नहीं है परिपक्व अवस्था कहने की है कहने में किस युक्ति से कैसे कहना चाहिए किस तरह से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो इस विषय में तो मैं खोज करता हूँ साफ शब्दों में कहता हूँ मैं इस खोज में हूँ परमात्मा तत्व की कैसे जल्दी प्राप्ति हो जाए सुगमता से कैसे प्राप्ति हो जाए इस खोज में हूँ अदवाई कही थी ऋषिकेश में 5-7 वर्ष और रह गया जीवन मैं बहुत सुगमता बता दूंगा
पहले तो महाराज जी आप क्रिया पर जोर देते थे अब नहीं देते हैं
अब तो मेरे को बहन बातों का ज्ञान हुआ है
तो महाराज जी इस विषय में आप बहुत आगे बढ़ गए ना तब जाके आप बोलते हैं
नहीं बोलता हूँ नहीं बोलता नहीं बता हूँ फंस उड़ा नहीं रह जाए इस बात बोलता हूँ क्रिया में फंसे नहीं रहे मैंने दिन बताया मेरा समय गया बहुत सा तो मैं इतना जानता नहीं था जानने वाला बताने वाला कोई ऐसा विशेषता से साफ विश्लेषण कर बताने वाला कोई मिला नहीं शास्त्रों में बात आती है उसमें भी सब में कर्ण की सभी अपेक्षा ही आती है संतों की वाणी आती है कर्ण की अपेक्षा ही आती है हर उसी से संस्कार पड़े हुए सत्संग सुनो व्याख्यान सुनो कहीं जाकर को जो पूछो बात होगी तो सब में ये बात उनको साथ लिखती ही होगी ऐसा विशेष रूप से नहीं आता इस बार मैं कहूँ तो कहाँ से कहूँ अब भी ये बात कह दी कि कुछ में 5-7 वर्ष रह गया तो आपको बहुत सुन कर बता दूंगा यहाँ क्या अर्थ होता है मेरे को युक्तियां मिलती है उनकी दलीला मिलती है प्रमाण मिलते हैं मेरे को जो विचार करता हूँ जो विलक्षणता दिखती है वो अधीन नहीं है कर्ण सापेक्ष है तत्व सापेक्ष नहीं है साधन की आवश्यकता जरूर है कर्ण की भी आवश्यकता जरूर है पर परमात्मा तत्व इनकी अपेक्षा रखता ही नहीं है
नहीं अंतःकरण की आवश्यकता जरूर है परंतु तत्व की प्राप्ति में उसकी सहायता की जरूरत नहीं है
वहाँ पहुँच नहीं सकता परमात्मा तत्व तक कर्ण पहुँच सकता नहीं सामर्थ्य नहीं जड़ है चेतन तक कैसे पहुँचेगा
तो इसकी कहाँ तक जरूरत है
कहाँ तो संसार में जहाँ तक ऊँचे उठने की जरूरत है सीढ़ी कहाँ से ऊँची जहाँ खड़ा है वहाँ से जरूरत है और तत्व प्राप्ति कैसे हो जाएगी तत्व प्राप्ति कैसे हो जाएगी सीढ़ियाँ से सीढ़ी छोड़ने से होगा उपयोग मामूली बात को मानता हूँ मैं तो व्यवहार को उपयोग मानता हूँ सेवा जो उपयोग है उसमें कहता हूँ तुम काम धंधा अपने पास लो आदर सत्कार दूसरों को दो ऐसे करो तुम्हारे परमात्मा प्राप्ति हुई साधन है ये व्यवहार में कहता हूँ सास बहू क्या करे ऋण जैसे नहीं क्या करे नन भाभी क्या करे कैसे करे बात बताता हूँ बहुत काम की चीज है तो मैं इतनी ऊंची बताता हूँ बात जितनी दूसरों ने जो करो सापेक्ष मानते हो नहीं बताई जितनी बात बताता हूँ मैं कर्ण सापेक्ष मानने वाले इसलिए मैं महत्व देता हूँ किस तरह से अहंकार ममता खास ही तो खुद खट कर परिश्रम करेगा तो अहंता मिटेगी या चीज वस्तु दूसरों को सेवा में लगेगा तो ममता मिटेगी ये व्याख्यान कौन देता है बताओ घर में बेरा जिठाने भी वस्तु दूसरा काम लेवे तो खटकर मैं परिश्रम करूं इसे परमात्मा प्राप्ति हो जाए कौन कहेगा। मैं कहता हूँ वस्तु और शरीर ये तो बाधक है, इनकी आसक्ति बाधक है, तो आसक्ति शिव से छूटेगी इसका महत्व तो कौन देता है।
ज्ञान से ही अहमता ममता के नाश की बात
करते हैं, ज्ञान से ही है। हम कहते हैं व्यवहार से हो जाएगी, व्यवहार से बहुत बढ़िया होगी, सुगमता से हो जाएगी, विचार के द्वारा त्याग कठिन होगा और विचार के द्वारा जल्दी होगा, विचार से भी जल्दी होगा, व्यवहार से विचार फैल हो जाता है। विचार एकांत में अपना विचार अच्छा रहता है पर व्यवहार मात्र फैल हो जाता है। व्यवहार भी जो ठीक कर देगा वो विचार फैल नहीं होगा, फैल हुआ बोलो
गुंजाइश नहीं फैल हो।
व्यवहार में ठीक कर दिया अब फैल कैसे हुआ। विचार तो स्वतः सिद्ध है, विवेक स्वतः सिद्ध है, ये व्यवहार के द्वारा सिद्ध नहीं होता है, प्रकाशित होता है, स्वतः है।
कर्ण निरपेक्षता में सबसे बड़ी आपकी दलील ये है कि भाई जो चेतन है वो जड़ के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता, कर्ण जड़ है वो तत्व चेतन है और कर्ण की वहीं तक आवश्यकता है जहाँ तक कर्णों में आसक्ति पड़ी है, संसार में आसक्ति पड़ी है,
सब तक आवश्यकता अनिवार्य नहीं है, आवश्यकता तो है अनिवार्य नहीं है,
अनिवार्यता नहीं
है। आप जो पूछोगे गहरा उतरोगे, आप स्वयं सोचोगे ना, फिर गहरी शंका करोगे तो विषय खुलेगा। अब ये बता देंगे स्वामी जी पहले करते थे, अरे पहले करते थे आज नहीं करते हैं क्या, आज नहीं करता हूँ
ये बात आप नहीं कहते थे कर्म निरपेक्ष बात,
आप बात तो नहीं कहते, ज्ञान नहीं था इतना,
ज्ञान परिपक्वता में आया ना,
तो ज्ञान परिपक्व तो कौन सा ज्ञान परिपक्वता, जो व्यवहार ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, विवेचन का ज्ञान है, उस ज्ञान में है परिपक्वता विशेषता, तत्व में थोड़ी विशेषता है, तत्व में तो वही आज है, आज है, पहले थी पहले थी उसका आज है।
जैसे वे जब तक तत्व प्राप्ति नहीं हुई थी महाराज जी को, तब तक तो वो क्रिया पर जोर देते थे, तत्व प्राप्ति हो गई तब नहीं देते हैं,
सही बात है, ये गलत है, ये बात गलत है, लोग अटकल लगाते हैं ना, ये गलत है। लोग तो कहते हैं कि रुपयों को स्वामी जी बनाने वाले रुपयों का अनुभव नहीं है, रुपयों की जो निंदा करते हैं स्वामी जी, उनको रुपयों का अनुभव नहीं है। मैं कहता हूँ रुपयों का अनुभव है, त्याग का अनुभव आपको नहीं है, मेरे को दोनों अनुभव है। ज्यादा कहता नहीं, अभिमान की बात है, कहता हूँ अजल कहना शुरू कर दिया है, तुम क्या समझो त्याग के, तो तुम क्या समझो, तुम त्याग के तत्व को शेर से जितना समझे है उस विषय में कर्मियों का आचार्य मानता हूँ, भक्ति का आचार्य नमानस को मानता हूँ, ज्ञान का आचार्य शंकराचार्य मानस को मानता हूँ और निष्काम भाव के आचार्य मैं शेर जी को मानता हूँ। शेर जी के समान कर्मयोग ना शंकराचार्य मिले ना रामानुजाचार्य मिलेगा, अरे तिलक तो मिलेगा क्या, बिल्कुल बेहद आदमी है, क्या करे, मैं नापास में रहता था तब ऐसे बारे में जब मेरे मन में आई क्या करे, तली मना चले गए होते बात करते उनसे, गीता कैसे लिखा होता मेरे पास, उनका कर्मयोग है तिलक का है, सिद्ध होने के बाद कर्मयोग है, उद्या पीछे हो जैसे आप कहते हो ना, ये कि स्वामी ऐसा कहते हैं, प्राप्त होने के बाद कहते हैं, ये वो एक बात कहते हैं। कर्मयोग साधन है, ये सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग ही रे भी गम्य थे। सिद्ध पुरुष में कोई कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग कुछ नहीं है, ये सब साधन है। ज्ञान योग भी साधन है, भक्ति योग भी साधन है, कर्म योग भी साधन है। जिंदगी तो ठीक रहते उसको साधन करो, ठीक है, साधन है। साध्य तत्व की प्राप्ति होने के बाद कर्म योग होगा, वो कर्म योग नहीं होगा, उसका ना कर्म है या अकर्म है, वो कर्म नहीं है अकर्म है। योग दर्शन की दृष्टि से कर्मा शुक्ला कृष्ण योगी नीति में त्रिशा, इसी से हम त्रिविध होता है। शुक्ल कृष्ण अनिष्टम इष्ट मिश्र त्रिविधि कर्म न फलम भौती अत्यागी नाम
त्रिकेन्यासी
कुशल। स्वामी आर्ष ग्रंथों का ज्ञान नहीं, गीता आर्ष ग्रंथ नहीं है, क्या है गीता, क्या है
भगवत ग्रंथ है,
फिर
आर्ष से भी ऊंचा है,
फिर स्वामी बूढ़े हो गए, व्याकरण का ज्ञान नहीं है, क्योंकि सेठ जी पास आने पर व्याकरण काम नहीं पड़ता, ज्ञान नहीं है, तो मैं गीता गीता है नहीं है,
दर्पण
व्याकरण विशील देखो, देखो आप, देखो आप तो व्याकरण के आचार्य हो, मेरे पीछे पड़े आपकी व्याकरण तेज होनी चाहिए, मेरे से मैंने व्याकरण को पढ़ी है, छियासी में पढ़े ही छोड़ दी, चौथे पिछले छिंद्र पढ़ी व्याकरण, छियासी में तो मात्र तो पढ़ाई छोड़ दी, कोई पढ़ाई नहीं करी मैंने, अब तो पढ़ता हूँ मैं तो। चिंद्राम जी हम पढ़ते थे तो चिंद्राम जी ने तो 30 परीक्षाओं में फॉर्म भरे, व्याकरण अकाबी 30 मैंने भरे, वेदांत 30। तुम्हें क्यों बोला कि अभी तो समय बर्बाद कौन करे, आप कभी पढ़ोगे मेरी पढ़ाई हो जाएगी, मैं वेदन पढ़ता आपको जल्दी पढ़ाई हो जाएगी, दोनों मास्टर हो जाएंगे, समझी करके हमारे घर शायद वर्ष दे दी हुई पास हो गए, हम परीक्षा महाराज हमारे बीमार हो गए, तो आ गए ऐसा नहीं दी, असली कोई खोज करे आप खोज करो, नारायण 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 नारायण।